कई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और स्थायी निवासी अपने माता पिता जो भारत में रहते हैं उनसे पुनर्मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले करीब 2 सालों से सख्त यात्रा प्रतिबंधों के चलते कई लोग अपने माता पिता से नहीं मिल पा रहे थे, मगर अब यात्रा नियमों को बदल दिया गया है और माता पिता को करीबी परिवार में शामिल किया जा सकता है। उनकी यात्रा छूट यानी ट्रैवल एग्जेम्पशन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। भारत में रहने वाले माता पिता अधिकतर वीज़ा सब क्लास 600 जो टूरिस्ट वीज़ा है, यही वीज़ा लेकर वह ऑस्ट्रेलिया आते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने पुष्टि भी की है कि सरकार उनके वीज़ा आवेदनों को प्राथमिकता देगी। तो चलिए बात करते हैं प्रियंका श्रीवास्तव जी से जो सिडनी में रहती हैं, जिन्होंने अपनी माँ के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए आवेदन किया था और वो अब मंजूर हो गया है। SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका स्वागत है प्रियंका जी। तो आपकी माँ को टूरिस्ट वीज़ा अब मिल चुका है, वो अब ऑस्ट्रेलिया आपके पास आने वाली हैं। जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी होगी, आपकी माँ भी बहुत खुश होंगी इस बात से। तो कितने समय के बाद आप मिल रही हैं?
मैं पूरे 2 साल बाद उनसे मिलूंगी। वो अक्टूबर 2019 में यहाँ से गई थी और उनका मार्च 2020 में आने का वापस प्लान था, बट तब तक लॉकडाउन हो गया और फिर वो आ नहीं पाई।
जी, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा समय वहाँ अकेले बिताना और आपके लिए भी यहाँ अकेले बिताना।
बेशक उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे पास मेरे हस्बैंड थे, हम लोग साथ में थे, बट मेरी माँ वहाँ पे अकेले रहती हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। स्पेशली जब इंडिया में लॉकडाउन हो रखा था और वो 3 महीने जब घर में अकेले रहीं, उनकी मनोस्थिति के लिए वो ठीक नहीं था। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो रही थी घर में लॉक रह अकेले रह के, मतलब कोई बात करने के लिए कोई कुछ नहीं। आप खुद सोचो, आप सुबह उठ के पूरे दिन कोई बात ना करो, बस अपना मोनोटोनस काम करो, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल था। पर तो बस ये था कि हम लोग फोन पे बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे, काफी फ्रीक्वेंटली बात करते थे कि जिससे उनको ये ना लगे कि वो वहाँ पे अकेले हैं। बट स्टिल हम साथ रहने का हम वो कमी पूरी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे मैं भले ही मेरे हस्बैंड थे, हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इतना लॉकडाउन नहीं था, हम बाहर जा सकते थे, बट एक टेंशन रहती थी हर समय अपनी मॉम की कि वो वहाँ पे कैसे रह रहे होंगे, कहीं प्रॉब्लम ना हो, कुछ ये सब ना हो। मैं यहाँ से उनके लिए ऑनलाइन ग्रॉसरीज ऑर्डर करती थी और ऑनलाइन जो भी है उनके लिए मूवी सिलेक्ट करके भेजना कि उनका टाइम पास लगा रहे, कि नेटफ्लिक्स वीडियो कॉल पे उनको नेटफ्लिक्स चलाना सिखाया, स्मार्ट टीवी ऑर्डर किया कि जिससे लॉकडाउन में उनके घर पर मन लगा रहे।
जी, तो वो भारत में कहाँ रहती हैं?
वो दिल्ली में रहती हैं।
जी, और ये आपकी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की आपकी ये पहली कोशिश थी?
नहीं, मैं पहले भी कर चुकी हूँ। तो मेरी माँ के पास इससे पहले 3 साल का टूरिस्ट वीज़ा था जो लास्ट ईयर सितंबर में एक्सपायर हुआ क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पाई। तो इसलिए फिर मैंने जैसे ही वो एक्सपायर हुआ मैंने दोबारा नया वीज़ा अप्लाई कर दिया, जस्ट ऐसा सोचा कि जब भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगी तो मेरा क्यू में आगे रहे और जल्दी प्रोसेस हो जाए जिससे मैं जल्दी से जल्दी उनको यहाँ ला सकूं।
जी, तो आपने कैसे किन किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया उनके टूरिस्ट वीज़ा के लिए?
उनके टूरिस्ट वीज़ा के लिए उनका पासपोर्ट चाहिए था, फर्स्ट एंड लास्ट पेजेस सर्टिफाइड करा के कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से, और पूरे पासपोर्ट की एक कॉपी, आधार कार्ड चाहिए था, उनकी फ़ोटो। उसके अलावा मैं स्पॉन्सर कर रही थी तो मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट दी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी, मॉर्गेज वगैरह या रेंट एग्रीमेंट वगैरह हम दिखा सकते हैं, और एक इनविटेशन लेटर प्रिपेयर किया कि मैं अपनी माँ को यहाँ पे बुला रही हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरी इतनी सैलरी है और मैं अपनी माँ का पूरा खर्च और लिविंग एक्सपेंसेस सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य हूँ, ये सब करना था। और एक छोटी सी आइटनरी की बस उसमें कुछ, क्योंकि यहाँ वहाँ पे वो फैमिली विजिट के लिए आ रही हैं तो एक पेज पे 2 लाइनें की हाँ भाई वो यहाँ पर आ रही हैं और इस एड्रेस पे रहेंगी हमारे साथ, दैट्स इट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आई थिंक काफ़ी इजी रहते हैं खुद से प्रिपेयर करने, बस मेरी मम्मा को वहाँ से स्कैन करके भेजना था और मैं यहाँ से अप्लाई कर देती हूँ।
तो आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए कब अप्लाई किया और अब आपको कब तक जवाब मिल गया?
तो ये मैंने लास्ट ईयर सितंबर में जब दूसरा वीज़ा दोबारा अप्लाई किया वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था। जस्ट अभी जब 15 अक्टूबर को इन्होंने अनाउंस किया कि पेरेंट्स आर नाउ कंसिडर्ड एज इमीडिएट फैमिली मेम्बर, उसके बाद से ही ये सारा प्रोसेस एक्सपेडाइट हुआ। फिर मैंने एग्जेम्पशन अप्लाई करी, फिर एग्जेम्पशन अप्लाई कर अप्रूव होने के एक दिन बाद वीजा अप्रूव हुआ। मैंने इमिग्रेशन मतलब एग्जेम्पशन ईमेल जो मुझे आई थी वो मैंने वीजा में अटैच कर दी कि जस्ट इन केस इफ इट हेल्प एक्सपेडाइट द प्रोसेस, बट नॉट श्योर। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वीजा जल्दी से जल्दी हो जाए जिससे वो यहाँ आ सके, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार एग्जेम्पशन ट्राई करी जब, क्योंकि पिछले साल जब पूरे टाइम लॉकडाउन था, इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज थे, तो एग्जेम्पशन ही के बेसिस पे ही सब आ सकते थे। बट
जी
तब हम कंपैशनेट एंड कंपेलिंग रीजन में कर रहे थे और वो हर बार रिजेक्ट हो रहा था। इस बार ही था कि वो अप्रूव हुआ बिकॉज अब वो कैटेगरी चेंज हो गई है, वो इमीडिएट फैमिली मेंबर की तरह यहाँ पे आएंगी।
तो पहले ट्रैवल एग्जेम्पशन में आपका क्या कारण रहा था?
क्योंकि पहले जो हम एग्जेम्पशन अप्लाई करे थे बिकॉज मैं प्रेग्नेंट थी एंड इट वाज आवर फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो दोनों ही पेरेंट्स के लिए था कि वो इस मोमेंट के लिए होते और जस्ट कि साथ रहने के लिए, गाइड करने के लिए कि
जी
कैसे क्या रहता है, और उन और हम लोगों को गाइडेंस एक बात है और दूसरा कि उनकी खुशी की वो अपने ग्रैंड चाइल्ड का बर्थ एक्सपीरियंस करते हैं जो वो इतने सालों से वेट कर रहे थे कि हाँ भी कब होगा कब होगा कब होगा। फाइनली जब वो हो रहा था तो हम चाहते थे कि काश वो हमारे साथ होते।
और ऐसे समय में तो माँ का याद आना जाहिर सी बात है।
बहुत जब भी कोई मुश्किल की समय आती है सर हर किसी के मुंह सबसे पहले यही निकलता है, वही माँ।
तो अब अगला कदम प्रियंका जी आपके लिए फ्लाइट बुकिंग रहेगा अपने माँ के लिए। तो इस विषय में आपने अभी कुछ पता किया है कहीं?
हाँ मैंने टिकट्स वगैरह देख लिए हैं, इस जस्ट क्योंकि उन्होंने अकेले आना है, तो मैं अभी जो फ्लाइट फर्स्ट नवम्बर से शुरू थी वो थी एमिरेट्स और श्रीलंकन एयरलाइन, तो उसमें उनको चेंज ओवर करना पड़ता, ट्रांजिट करना पड़ता, पर सिंस वो अकेले आ रही हैं तो मैं चाह रही थी कि वो डायरेक्ट फ्लाइट से हैं, क्योंकि वो भी वो प्रेफर करती हैं कि जिससे कहीं कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो या कुछ ना हो और वो आराम से आ सके। तो 15 नवम्बर से एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है दिल्ली टू सिडनी, तो उसमें मैं उनकी बुकिंग कराने वाली हूँ। उसका मुझे बस डेट्स कंफर्म करनी है अपनी माँ से कि जिससे वो वहाँ पे रैप अप कर ले, क्योंकि इस बार वो आएंगी तो यहाँ पे अच्छे से रहने के लिए, लंबे समय के लिए रहने के लिए आएंगी। उनको 1 साल कॉन्टिन्यूस स्टे का मिला है तो वी विल मेक यूज ऑफ इट, तो बस वो वहाँ पे रैप अप कर रही है, बट शी विल बी हेयर इन नवम्बर इट सेल्फ बाई द मिड और एंड ऑफ नवम्बर जस्ट बिफोर माई बर्थडे।
जी, तो प्रियंका जी सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा ही क्यों आपने अप्लाई किया? और भी तरीके के वीज़ाज़ अवेलेबल हैं पेरेंट्स के लिए?
हाँ जी, सबसे आसान टूरिस्ट वीजा है, मैंने इससे बाकी वीजा के ऑप्शन भी एक्सप्लोर करे हैं। तो एक 870 वीजा है जिसमें आप 3 ईयर्स या 5 ईयर्स कॉन्टिन्यूस स्टे मिलता है, पर उसकी फीस एक तो बहुत ज्यादा है, 3 ईयर्स के लिए आपको 5,000 पे करना है और 5 ईयर्स वीजा के लिए 10,000। बट उसका बेनिफिट ये है कि कॉन्टिन्यूस स्टे कर सकते हैं, पेरेंट्स को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बट उस वीजा को आने में भी टाइम लगता है कि पहले आपको स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना है, फिर जब आपकी स्पॉन्सरशिप अप्रूव होगी उसके बाद आप अपना नॉर्मल वीजा 870 अप्लाई कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा था मुझे, तो इसलिए मेरे को था कि मैं 600 कर दूं। उसके अलावा एक 143 है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा, उसकी वो इट्स लाइक अ पीआर फॉर पेरेंट्स, तो हमने वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया है, बट उसका वेट टाइम पहले 5 to 6 years था और अब कोविड के बाद तो क्या ही होगा पता नहीं, उसके लिए भी काफी डिस्कशंस चल रहे हैं। और सिंस मेरी मॉम अभी 65 तक नहीं हुई है तो इसलिए मैं एज पेरेंट वीजा और बाकी कोई वीजा एक्सप्लोर नहीं कर सकती।
प्रियंका जी, SBS हिंदी प्रोग्राम से जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।